ओम शांति। मुझे लग रहा है कि आप सभी यहां केवल फिजिकल रिफ्रेशमेंट के लिए नहीं आए हैं, लेकिन स्पिरिचुअल रिफ्रेशमेंट भी हो रही है ना। नहीं, ऐसे वातावरण में आके, ऐसे सरल वाइब्रेशन, शीतलता के वाइब्रेशन जब मिलते हैं, तो जो भी दिल और मन में लिमिटेशंस है, थोड़ा कुछ भी हार्डनेस है, वो सॉफ्ट हो जाता है, आत्मा पिघल जाती है आकर के। नहीं, यही है ना अनुभव आपका। तभी जाके जो सत्यता क्या है वो हमको महसूस होता है। हमारी थोड़ी सी हिस्ट्री बताती हूं। हमारे जो दादाजी थे वो जज थे, और उन्होंने जब महात्मा गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, तो खास अहमदाबाद में गांधी जी के साथ थे। और मुझे ये पैराडॉक्स लगता है कि हमारे जो भी देश को स्वतंत्र बनाने के लिए जो भी निमित्त बने थे, अधिकतर लॉयर्स थे है ना। गांधी जी खुद वो अपना एक लॉयर था, और सभी, लेकिन लॉयर्स थे, लेकिन जो लॉज धर्मों के अलाइनमेंट में नहीं था तो उनको तोड़ते थे भी थे। दिस इज व्हाट इज द बेसिस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस, दैट लॉ इज नॉट लॉ इफ इट इज नॉट अलाइंड विद धर्म। करेक्ट। इसीलिए हमारा आज स्लोगन क्या है, यथो धर्म तथो जय। इन धर्म देयर इज विक्टरी। तो आज ये जो सिंफनी शब्द है टाइटल में, मुझे बहुत लग गया, क्योंकि सिंफनी मीन्स हार्मनी ऑफ साउंड, और वो भी हम सिंफनी ऑर्केस्ट्रा के लिए शब्द यूज करते हैं। जब भी कोई ग्रुप होता है, आपस में हार्मनी ऑफ साउंड क्रिएट करते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो एक व्यक्ति, इसका जो भी इंस्ट्रूमेंट हो, आप सोचो टू गेट कलेक्टिव परफेक्शन कितना समय लगता होगा। हाउ मेनी आवर्स ऑफ प्रैक्टिस यू थिंक इट नीड्स टू गेट कलेक्टिव परफेक्शन। फर्स्ट इज इंडिविजुअल परफेक्शन। 70% मेहनत इंडिविजुअल करते हैं अपनी साउंड को परफेक्ट बनाने के लिए। जो भी उनका इंस्ट्रूमेंट होता है, दे प्रैक्टिस इंडिविजुअली 70% और फिर कलेक्टिवली ओनली 30%। तब जाकर के आपको सिंफनी की साउंड मिलती है। अभी इसका रिलेशनशिप क्या है ये टॉपिक के हिसाब से? हम यहां सभी बैठे हैं, ये तो जरूर हम मानेंगे that a spiritualized society, a dharmic society, does not require external agencies to monitor it. Spiritualized society is self-regulated. Spiritualized society में इतने अच्छे आपस में संबंध व्यवहार की क्वालिटी बढ़ती है कि किसी को दुख देना या किसी से कुछ ऐसे मैनिपुलेशन से, झूठ चोरी कुछ लेना, वो नहीं होता है। एंड स्पिरिचुअलाइज्ड सोसाइटी इज अ लॉ अबाइडिंग सोसाइटी। आप सभी यहां पहुंचे हो बिकॉज यू एक्सेप्ट दिस कनेक्शन बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड लॉ। लेकिन इस सोसाइटी को परिवर्तन करने के लिए क्या चाहिए? हम जितना कलेक्टिव एफर्ट कर रहे हैं, चलो कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मेक 70% कलेक्टिव एफर्ट, लेकिन व्यक्तिगत एफर्ट कितना है? व्यक्तिगत परिवर्तन कितना हुआ है? 30%. इसीलिए हमारा कलेक्टिव एफर्ट सस्टेनेबल नहीं रहता है. एंड द फर्स्ट लॉ हियर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ओनली व्हेन आई चेंज द वर्ल्ड चेंजेस. मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूं क्योंकि भारत का डेस्टिनेशन है स्वर्ग. एंड व्हाट इज स्वर्ग? डू यू थिंक देयर इज अ लीगल सिस्टम इन हेवन? है? डू वी नीड अ लीगल सिस्टम इन हेवन? नो. द होल सोसाइटी ऑपरेट्स ऑन वर्च्यू, द लॉ ऑफ वर्च्यूज. इतनी नेचुरली सेल्फ रेगुलेटिंग सोसाइटी है, पवित्रता, ह्यूमिलिटी, सारे आत्मा की शक्ति के बल से वो सोसाइटी चलती है. कोई पुलिस सिस्टम नहीं चाहिए, कोई लीगल सिस्टम नहीं चाहिए, एक में सभी का भला. इट इज अ कंप्लीटली हार्मोनाइज सिस्टम. अभी हमारा मंजिल ये है. The current legal system that we sit in is not our own creation. It's a colonial footprint. And until we recognize the foundations of our dharma, we cannot co-create a spiritualized society. Bharat is the only nation in the world that has a powerful memory of swarg, a civilized, ordered society. And how did it come about? Because the change began with each individual. And Brahma Baba, jo hamare founder the, उनको बहुत समय से पहले से ही ये रियलाइजेशन बहुत गहरा रूप से आया कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स व्हाट. स्पिरिचुअलिटी का रूप ये है, स्पिरिटस ब्रेथ, जो हमारे हिंदी में हम प्राण शब्द कहते हैं. इट्स द लाइफ फोर्स. तो जब तक हम अंदर की आंतरिक स्पिरिचुअलिटी की शक्ति से, उस शक्ति की पूंजी का काम नहीं लेते हैं, तो हम वैल्यूज और वर्च्यूज को सस्टेन नहीं कर सकते हैं. हमारे जीवन में नहीं सस्टेन कर सकते हैं, व्यवहार में नहीं सस्टेन कर सकते हैं. तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो अभी तो दुनिया के हिसाब से तो हम इसको संस्था कहेंगे, हम तो अंदर के हिसाब से इसको परिवार मानते हैं, स्पिरिचुअल परिवार मानते हैं, इसको एक यज्ञ मानते हैं. यज्ञ माना स्वाहा, बुराइया को स्वाहा. यज्ञ माना कमिटमेंट टू ट्रूथ एंड टू सुप्रीम लव. एंड फॉर द सेक ऑफ ट्रूथ स्वाहा, तब जाकर के एक परिवार की भासना रहती है. अपनापन, मैं तू तू खलास हो जाता है, अपनापन की फीलिंग आती है. आप सोचो एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारे ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स 120 देशों में 5,500 सेवा केंद्र हैं सारे विश्व में. अलग अलग कल्चर के, भाषा के, धर्मों के, लेकिन जब यहां पहुंचते हैं एक की फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि यहां पे आप अपना रंग, कल्चर, भाषा सब कुछ भूल जाते हो ना। जो देह की बातें की जो कनेक्शन है वो जैसे बैक सीट हो जाता है। इट्स नॉट अ फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ आइडेंटिटी। फर्स्ट आपकी फीलिंग्स टच होती है, शांति महसूस होता है, जो आत्मा का स्वधर्म है, ईश्वरीय स्नेह प्राप्त करते हैं। जब आत्मा इतनी सॉफ्ट बन जाती है अपने ओरिजिनल स्वधर्म में, तब तो इस देह का क्या है, वैरायटी है, वैरायटी में खूबियां है। किसी का दुश्मन नहीं बन सकते हैं। Where there is the power of spirituality, there cannot be enmity. Your heart cannot sustain dislike for anyone. Grina bhav, irsha, comparison, competition, all this is sign of weakness, emptiness inside the soul. तो अंदर से लेकर के परिवर्तन, स्पिरिचुअल पावर को जगाना है। क्योंकि आप देखेंगे म्यूजिक में भी, द साउंड ऑफ म्यूजिक इज नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लेकिन जो बजाने वाला है उसके ऊपर है। जिस पैशन से बजाता है, इंटेंशन से बजाता है, परफेक्शन ऑफ साउंड एक फ्लूट से नहीं मिलेगा, सितार से नहीं मिलेगा। परफेक्शन ऑफ साउंड कम्स व्हेन देयर इज परफेक्शन ऑफ इंटेंशन। तो हमको दोनों तरफ का बैलेंस देखना है हमारे जीवन में। क्योंकि आप सभी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप लोग निमित्त हो, आप लोग एक छोटा माइक्रोकॉस्म हो, दुनिया का सैंपल हो। आप में जिस जितना परिवर्तन आएंगे, आप एक लाइट हाउस, माइट हाउस बन सकते हैं। बिकॉज चेंज ओनली हैपन्स बाय एग्जाम्पल। ये हमारे ब्रह्मा बाबा, हमारी वरिष्ठ दादिया ने हमको यही सिखाया है। दिस इज द ओनली संस्था इन भारत इन हुज कॉन्स्टिट्यूशन लीडरशिप इज इन द हैंड्स ऑफ द मदर्स, truly upholding our national spirit, Vande Mataram. This is a huge revolution for Bharat. कैसे हो सकता है? क्योंकि spirituality एक ऐसी चीज नहीं है जो आप सिर्फ concept को बताओ या कुछ एक intellectual के हिसाब से उस कुछ चीज को explore करो। Spirituality has to be experienced, felt and lived. हमारी दादियां ने ब्रह्मा बाबा के गाइडेंस से बहुत सालों से तपस्या में रहे हैं। त्याग की भावना, लोगों के उद्धार के लिए खुद अपनी पुरानी बातें का त्याग, चाहे देह का भान का त्याग, देश की सेवा में औरों के उद्धार के लिए अपना तपस्या, योग बल जमा करके देश की सेवा में लगे थे। तो इफ आई वॉन्ट टू बी एन इंस्ट्रूमेंट फॉर चेंज, टू ब्रिंग हार्मनी इन सोसाइटी, टू ब्रिंग सत्युग अगेन, आई हैव टू एक्सेप्ट द हायर लॉज बेस्ड ऑन धर्म फर्स्ट। यस, हम एक सिस्टम में काम कर रहे हैं विच इज द इम्पोजिशन ऑफ फॉरेनर्स, फाइन, बट देर इज अ वे टू चेंज इट इफ आई कनेक्ट विथ माई धर्म, बिकॉज वी हैव टू अडेप्ट इट टू आवर कल्चर। एंड द ट्रू भारत कल्चर इज अ कल्चर ऑफ धर्म, अहिंसा परमो धर्म। देवी देवताएं की यही पहली निशानी थी. दैट इन इट्स ट्रूएस्ट फॉर्म धर्म मीन्स नॉन वायलेंस एट इट्स डेप्थ. अभी मैं सोसाइटी की बात नहीं कर रही हूं, आप अपनी दिल को देखो, कहां तक नॉन वायलेंस आपकी फीलिंग्स में आई है, आपके संकल्प में आए हैं. देखो कितना इजी होता है किसी के अगेंस्ट जाना, किसी ने कुछ बोला, उल्टा बोला या इंसल्ट किया, तुरंत आपका मन की वृत्ति उसके अगेंस्ट जाती है ना, ये वायलेंस है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेप्थ्स ऑफ वायलेंस कि हमने क्यों हमारी शांति को किचड़े के डब्बे में फेंक दिया है और ये सारे इनसे हम काम ले रहे हैं. हमारी दादियां ने, खास करके हम तो दादी जानकी जी के साथ तो बहुत सालों से रहे हैं, और इन दादियों ने, मैंने जहां तक देखा साक्षी होकर के, उन्होंने बहुत गहरे स्पिरिचुअल लॉज को समझा है. दी स्पिरिचुअल लॉज गवर्न आवर ह्यूमन रिलेशनशिप. पहला जो है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ स्पिरिचुअल आइडेंटिटी फर्स्ट. उन्होंने बहुत डेप्थ से इस पे प्रयोग किया, खुद के साथ औरों के साथ. जब आप खुद मानो कि हां मैं आत्मा हूं और केवल मैं इस जीवन में इस शरीर द्वारा मुझे एक ह्यूमन एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, तब जाकर के आप औरों में वही निश्चय बैठ पाएंगे, बिठाएंगे. आप आत्मा आत्मा के साथ बात करेंगे, क्योंकि इंटर रिलेशनशिप में शब्द की बात नहीं है, वृत्ति की बात आती है. आपको व्यवहार संबंध में परिवर्तन लाना है तो पहले अपनी वृत्ति में परिवर्तन लाना पड़ेगा. जब तक आपकी वृत्ति स्पिरिचुअलाइज्ड नहीं बनी है तब तक आपके व्यवहार में लिमिटेशंस, बाउंड्रीज होते रहेंगे. दिस इज अ वेरी डीप सटल सब्जेक्ट, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट टू बी टॉक्ड अबाउट, इट हैज टू बी लिव्ड. That means cultivating soul conscious vision, soul conscious vritti, soul conscious smriti. क्योंकि seed of creation smriti से होती है. आजकल आप देखो हमारी स्मृति में क्या है, क्या है, दुनिया की बातें, ये हुआ, फलाना हुआ, गॉसिप की बातें हैं, लोगों की बातें हैं, लोगों की स्टोरीज है, और खुद की भासना, खुद की भावना, खुद की स्मृति. सारा चटनी में कई हमारी स्मृति गुम हो गई है. तो फर्स्ट लेसन आई हैव टू रिक्लेम माय अवेयरनेस, मैं कौन हूं. दिस इज द सीड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंटेंशन, स्पिरिचुअल इंटेंशन. तो ऑफ कोर्स आप जहां पे आए हैं, हम यहां पे योग मेडिटेशन का अभ्यास पे बहुत जोर देते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस नहीं है आप हेड से हार्ट तक नहीं जा पाएंगे, और हार्ट और हेड का बैलेंस नहीं रहेगा. चलो हम अभी 2 मिनट के लिए बोल रहे हैं आत्मा, चलो आत्मा की, आत्मिक स्मृति की अनुभूति करें. जहां पे भी बैठे हो आप थोड़ा अलर्ट होकर के बैठो. एंड जस्ट टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ. श्वास को बिल्कुल शांत बना दो. और अपना ध्यान इस प्रेजेंट मोमेंट में लेके आओ। And just feel the feet underneath, feel the ground underneath your feet. ये कुर्सी जिस पे आप बैठे हो उसको फील करो, बिल्कुल अपना ध्यान अभी इस घड़ी में लेके आओ। और अभी अपने आप को अंदर महसूस करो, फील योर ब्रेथ, अपने श्वास पे ध्यान दो और जो श्वास का फ्लो है उसको फॉलो करो। और ये महसूस करो कौन सी शक्ति चला रही है श्वास को। अपनी आत्मा को, मैं आत्मा एक अति सूक्ष्म एनर्जी, अंदर की एक शक्ति हूं, और वो शक्ति को एकाग्र करके आप विजुलाइज कीजिए कि प्रकृति के बीच में एक सिंहासन है जहां पर मैं आत्मा, स्टार मिसल, शांति की शक्ति बैठी हूं। मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही हूं, मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देख रही हूं, और अपने मन में ये एक संकल्प 3 बार दोहराओ। मैं एक शांत चित आत्मा हूं। मैं एक शांत चित आत्मा हूं। मैं एक शांत चित आत्मा हूं। यही शांति मेरा स्वधर्म है। और इसी शांति की शक्ति से काम लेना है। शांति से सोचना है, शांति से बोलना है, शांति से कर्म करना है। Original right. और मैं केवल दो शब्द याद रखती हूं, ताकि बार बार मैं अपनी सीट को धारण कर सकती हूं। ये दो शब्द है ओम अच्छा लगा। थोड़े समय के लिए जब हम शांति की सीट पे बैठते हैं ना, तो जो भी हमारे अभिमान के ड्राइवर्स होते हैं वो डिसएंगेज हो जाते हैं, मैं का भान नहीं रहता है। इस दुनिया के हिसाब से मेरी आइडेंटिटी क्या है वो सब भूल जाते हैं, हम अनलिमिटेड हो जाते हैं, है ना। और जब हम अनलिमिटेड को महसूस करते हैं, रियलाइज करते हैं, तभी हमको हम कौन है एक अनलिमिटेड परिवार के इंटरकनेक्शन की महसूसता होती है, लाइफ के लिए वैल्यू रहता है, रिस्पेक्ट रहता है। तो बैलेंस ले आने के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज रीसेट बैक टू ओम शांति, हर बात में अंदर से पुराने संकल्प आएंगे ओम शांति, पुरानी बातें सताएंगी ओम शांति। ये एक पर्सनल मंत्र आप बनाएंगे ना, तो यू विल बी एबल टू मेक द पास्ट पास्ट, और आपकी थिंकिंग में क्रिएटिविटी आएंगी। अब देखो, साइंस ने अभी हमको बताया है कि आप सवेरे उठेंगे तो जो पहले पहले जो 10-15 मिनट होंगे उस समय आप जो भी संकल्प रचेंगे, जो फीलिंग्स क्रिएट करेंगे, उससे आपका सारा दिन का मूड बनता है। और आपको पता है मूड कितनी पावरफुल चीज होती है। अच्छा मूड होता है सब कुछ अच्छा लगता है, चाहे बारिश भी पड़े चाहे कुछ भी हो जाए, लाइटली लेते हैं सब कुछ। लेकिन मूड बुरा होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, छोटी बात भी बड़ा बना देते हैं। तो वी हैव टू टेक चार्ज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, बिकॉज बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड हायर लॉज रिक्वायर्स मी टू फील एंड प्रैक्टिस द हार्ट एंड द हेड। तो फीलिंग, जब शांति की फीलिंग को क्रिएट करना है तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम, सवेरे का टाइम महत्वपूर्ण है। उस समय हम जो शांति अनुभूति कर सकते हैं वो बिल्कुल हमारे नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है, बिल्कुल। और उसी समय जो भी हम अपने लिए भावना प्रकट करेंगे, ईश्वर के प्रति स्नेह अंदर से इमर्ज करेंगे, उसके आधार से हमारा मूड बनता है, मूड के आधार से हमारे दिनचर्या और हमारे संबंध व्यवहार इफेक्ट होता है। तो द रीसेट इज द रीसेट बैक टू प्यूरिटी ऑफ पीस। This is the foundation of dharma. The biggest enemy we have is ourselves. कोई और हमारा दुश्मन नहीं है। हम किसी से हार नहीं खाते हैं, हम केवल अपनी इच्छाओं से हार खाते हैं, एक्सपेक्टेशन से हार खाते हैं, हमारी बुराइयों से हार खाते हैं। Because the karmic law is a natural justice system. Nobody can escape the law of karma. तो मुझे अपना कर्म का हिसाब किताब देखना है। I have to clean up my own act first. क्योंकि जब तक अंदर से स्वच्छता, pure feelings नहीं होंगे ना, तो जो मैं बोलूंगी वो तीर लगेगा नहीं किसी को, वो फीलिंग्स उसमें जागृत नहीं होंगे। क्योंकि व्हाट इज ह्यूमन बीइंग्स, वी आर एक्सचेंजिंग फीलिंग्स ऑल द टाइम। आपको हमारी फीलिंग मिल रही है, मुझे आपकी फीलिंग मिल रही है, करेक्ट? दिस इज व्हाट ह्यूमन नेचर इज ओरिजिनली। तो हम सोचते हैं कि हम अपनी फीलिंग्स को निग्लेक्ट करें, बाकी अच्छी अच्छी बातें करें, ट्राई टू प्रूव द ट्रूथ, ट्राई टू, सक्सेस नहीं मिलता है। तो दैट्स व्हाई द फर्स्ट बेसिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर धर्म इज अ रीसेट बैक टू ओम शांति, सेल्फ अवेयरनेस एट अ वेरी डीप लेवल। फिर हमारे जीवन में प्योर फीलिंग्स पैदा होते। एंड यू नो man-made laws are not perfect because man is not perfect, correct? तो हमको जो नियम बनाने हैं हमारे जीवन में, आप देखो वर्तमान समय अनुसार हमारी सोसाइटी, on what basis are people living their lives? मैं किसी को भी पूछूं आपके जीवन के सिद्धांत क्या है, आप मुझे क्या जवाब देंगे? Many people today are not living on the basis of personal principles, living on the basis of materialism. Jo kuch easy maal mila, wahan jayenge. Jo kuch easy hota hai, wo karenge. But to do what is right? To spirituality mein keval humko information nahi lena hai ki main kaun hu, lekin apne jeevan mein personal niyam maryada banane hai. सिद्धांत के आधार से जीना है, तब जाकर के ऑर्डर में हमारे जीवन की यात्रा ऑर्डरली रहेंगी। यू नो वी टॉक अबाउट लॉ एंड ऑर्डर, यू कैन नॉट इंपोज ऑर्डर। नेचुरल ऑर्डर, द फाउंडेशन ऑफ नेचुरल ऑर्डर इज प्यूरिटी। जब वो चीज अपनी ओरिजिनल स्थिति में आती है, ओरिजिनल स्वरूप में आती है, तब उसका इफेक्ट होता है कि अराउंड इट एवरीथिंग फाइंड्स इट्स ओन प्लेस। बट फर्स्ट आई हैव टू फाइंड माय ओन प्लेस। रियलाइजेशन से मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड माय ओन प्लेस फर्स्ट। और हम क्या करते हैं, हम खुद का छोड़ के दूसरे में फंसते हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है। हम खुद मिसप्लेस्ड रह गए हैं और औरों को ठीक जगह पे बैठने की कोशिश कराते हैं। नॉट पॉसिबल। यू नो मुझे बहुत समय पहले, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी में एक्सपेरिमेंट्स बहुत होते हैं, देखो काम को जीतना है, क्रोध को जीतना है, लोभ को जीतना है. दिस इज द फाउंडेशन ऑफ करप्शन इन आवर सोसाइटी. एंड एट द रूट वी हैव टू कॉन्कर दिस करप्शन इन साइड हियर फर्स्ट. मुझे याद है बहुत समय पहले, ऐसे नहीं कि बस हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, हमारे सिद्धांत है, हमारे प्रैक्टिसेस है, लेकिन ऐसे नहीं है कि हम बिल्कुल 100% क्रोध मुक्त है. दिस इज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एक्सपेरिमेंट ऑफ गॉड्स पावर, एक्सपेरिमेंट ऑफ धर्म. तब हम विजय प्राप्त करते हैं. और जितने छोटी छोटी बातों में विजय प्राप्त करेंगे तो हमारी लाइफ एक धार्मिक एग्जाम्पल बनेगी औरों के लिए. दिस इज ऑथेंटिसिटी. तो मुझे याद है बहुत समय पहले जब हम रिट्रीट सेंटर में, हमारा ग्लोबल रिट्रीट सेंटर है ऑक्सफोर्ड में, वहां सेवा केंद्र पे हम सेवा पे थे बहुत सालों से. तो वहां पे हम एक बड़ा प्रोजेक्ट का देखभाल कर रहे थे. तो उसमें जो हमारे साथ भाई काम करने वाला था, बहुत बड़ी मिस्टेक की थी उसने, और उसका नतीजा ये था कि पैसे का नुकसान होने वाला था, टाइम डिले होने वाला था प्रोजेक्ट में, कई सामान जो लाया था उसका भी नुकसान हुआ था. तो मेरा फर्ज था जांच करने के लिए कि क्या हुआ भाई, इतना बड़ा भारी मिस्टेक क्या हुआ, कैसे हुआ. तो मैं जब ऑफिस में गई और मैंने अंदर से, मुझे थोड़ा सा अंदर से रिएक्शन हुआ था, अरे भाई तुम इतना समझदार हो, कैसे हुआ तेरे से. मेरे मन में ये संकल्प उठा था लेकिन मैं शब्दों में नहीं आई थी, लेकिन थोड़ा सा मेरी फीलिंग्स मिसप्लेस हो गए मेरे रिएक्शन के कारण. बाहर रूप से मैंने इसको शांति से, शांति के शब्द से बोला कि भाई इतना सारा कुछ हो, ये क्या हुआ. सामने से मुझे तुरंत रिएक्शन मिला, नो सरप्राइज, क्योंकि मेरा पहला रिएक्शन था. तुरंत वो गर्म हो गया, आप कौन हो मुझे बोलने वाले, आप कौन हो मुझे करेक्शन करने वाले. मैंने बोला भाई हम काम कर रहे हैं साथ में, मैं करेक्शन नहीं कर रही हूं, मैं केवल पूछ रही हूं, नहीं आप कौन हो. तभी मैंने सोचा उस समय, देखो मेरे अंदर भी थोड़ी गर्माइश पैदा हो रही थी, उसकी गर्माइश से हमारे अंदर गर्माइश. देखो ना, थोड़ा सा रिएक्शन का आग शुरू होता है ना, फ्लेम, वो जैसे फुल फायर बन सकता है. तब मैंने डिसीजन लिया, अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वी आर नॉट इन द स्टेट ऑफ माइंड टू हैव सिविलाइज कॉन्वर्सेशन, बाद में बात करेंगे. मैंने जब ऑफिस छोड़ा तो एक कॉरिडोर था, तो मैंने उसमें देखा, जैसे मैं पैदल कर रही थी, एक अभिमान का आवाज शुरू हुआ मेरे दिमाग में, अरे वो क्या समझता है अपने आप को, उसकी भूल थी, उसको मानने चाहिए था, क्या समझता है इतनी जोर से आपके सामने बात करता है. देखो अभिमान, पहले रिएक्शन देह का अंदर रिएक्शन हुआ, फिर अभिमान का वॉइस आया. तो अभिमान ने फिर मुझे कन्विंस किया, देखो ये फोन है कॉरिडोर में, अभी तुम रूबरू बात नहीं कर सकते हो, फोन द्वारा बात करो, फोन द्वारा उसको कन्विंस करो. ये देखो अभिमान. मैंने फोन उठाया, दोबारा कोशिश किया, भाई ये फिर तो बिल्कुल गुस्सा हो गया उसको, तो बिल्कुल एकदम गुस्सा हो गया. गुस्से में फिर उसने फोन रख दिया, ऐसे ही फोन रखने के बाद मेरे अंदर मैंने सोचा ये क्या, इसकी गलती है और वो मेरे पर फोन रखता है, मैं अभी उसको बताती हूं. मैंने बोला नहीं नहीं, ये क्या, ये कैसे संकल्प आ रहे हैं, जा गोपी तुम जा किचन में ग्लास पानी पी ले, शांत हो जाओ. मैं गई किचन में, एक ग्लास पानी उठाया, और जैसे मैं पानी पी रही थी तो कोई कमरे में आया, किचन में आया, बोला अच्छा बहन जी आप ठीक हो. मैंने बोला हाँ ठीक हो, लेकिन ऐसे लगता है आप बहुत पीले पीले लग रहे हैं, मतलब पेल हो गए. तब मेडिटेशन की जरूरत है आपको. तो मैं गई फिर तुरंत मेडिटेशन के कमरे में, और आप मानो नहीं, छोटी सी सिचुएशन से क्या होता है, यहां पे युद्ध शुरू होता है. उसने ये बोला, ये करना नहीं चाहिए था, वो करना नहीं चाहिए, मैं शांत चित आत्मा हूं, नहीं उसको ये क्यों बोला मेरे साथ, ये क्यों किया, मैं शांत चित आत्मा हूं, मैं शांत, दोनों डायलॉग चल रहे थे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद बिल्कुल ऐसी स्थिति पे पहुंची जिसमें जो मेरी अंदर की सत्यता है कि अभी वर्तमान समय में इस सिचुएशन में कौन सी बात इंपॉर्टेंट है, मैं राइट हूं वो इंपॉर्टेंट है कि वो रॉन्ग है और मैं राइट हूं, या इस संबंध में प्यार रहे, गुड विशेस रहे, स्नेह रहे, विच इज द एक्ट ऑफ धर्मा, बीइंग राइट और बीइंग कंपैशनेट, विच इज द एक्ट ऑफ धर्मा, बीइंग कंपैशनेट। और मैंने केवल अपने आप को यही प्रश्न पूछा, यू वॉन्ट टू बी राइट और यू वॉन्ट टू बी कंपैशनेट, बस एक सेकंड में फीलिंग्स का परिवर्तन हो गया। जो अंदर से वो कंप्लेंट आती रहती थी, नहीं मैं राइट हूं, ये क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खत्म हो गया। और जैसे बिल्कुल गुड फीलिंग्स, प्यार की फीलिंग्स, इतनी अंदर से शुभ भावना आ रही थी, प्यार भरी फीलिंग्स आ रही थी कि जैसे मैं एक प्यार के सागर में खो गई हूं। फिर 20 मिनट के बाद मैं अपनी सीट से उठी, दरवाजे मेडिटेशन के कमरे के दरवाजे तक पहुंची, और जैसे मैंने दरवाजा खोला वो भाई सामने खड़ा था, भाई सामने खड़ा था और उसने हाथ जोड़ के सॉरी बोला, और मैंने बोला कोई अर्चा नहीं, कोई बात नहीं, और सचमुच कुछ बात नहीं था। देखो कुछ होता अंदर से तो कोई आता, एक तो आपका रिएक्शन होता तो माफी मांगने के लिए नहीं आता क्योंकि आपने अपना राइट समझ करके आपने वो पकड़ा तो वो भी अपना राइट समझ के पकड़ेगा, वो भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि सूक्ष्म वाइब्रेशन है। आपने अंदर से लेट गो किया तो उसको वो वाइब्रेशन पहुंच गया, रियलाइजेशन आया कि मैंने ठीक नहीं किया, सामने से आकर के सॉरी बोला, और कुछ बात है ही नहीं ना इसमें, क्या है बड़ी बात। दिस इज द डायनेमिक्स ऑफ धर्मा अंडरनीथ कर्मा। You have to let go in your feelings. आप जितना गलेंगे, अभिमान से मरेंगे, नहीं, हमारी एक दादी की बहुत अच्छी स्लोगन थी, मर मर झुक झुक सीख सीख मर मर झुक झुक सीख सीख, माना अभिमान को तोड़ना है जो हमारी फीलिंग्स को राइचियसनेस में बांध देती है, और राइचियसनेस इज द बेसिस ऑफ वायलेंस। धर्म इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, द बेसिस ऑफ धर्म इज रिकनेक्शन विद ट्रूथ, माय ट्रूथ स्टेट ऑफ बीइंग, मैं कौन हूं। देखो आजकल फोटो का कितना बड़ा कल्चर हो गया है, चलो हम क्लासेस कराते हैं, लेक्चर्स कराते हैं, हमारे सामने लोग आते हैं, बहन जी हमने आपको यूट्यूब में देखा, तो यूट्यूब कौन सी बड़ी चीज है। अच्छा बहन जी हमारे सामने आते हैं, अच्छा बहन जी हमको फोटो लेना है, अच्छा एक तो आपने मुझे बॉक्स में देखा, अभी मैं सामने रूबरू हूं फिर भी आपको फोटो चाहिए, दूसरे बॉक्स में डालना है क्या। ट्रूथ क्या है? ट्रूथ है कि हाँ आपको देखा, अभी मुझे आपके साथ कनेक्ट होना है। कनेक्शन कैसे करेंगे? आंखों के द्वारा, आत्मा के व्यवहार में, बोल से, दृष्टि से, संबंध में आने से। उसके वजह से बस फोटो से खुश? फोटो में क्या कुछ सत्यता है क्या? सत्यता क्या है? और हमको सत्य जीवन जीना है, उसकी गहराई में जाना है, ना कि आंखों की खुशी के लिए कुछ करना है। So we have to deeply understand the original nature of truth, the feeling of truth, and real truth is non-violent. नहीं, हमारी दादियां ये भी हमको सिखाती थी कि जब आप औरों का भूल अपना भूल मानेंगे तब आप परिवर्तन ले आ सकेंगे। अपना मान के चलो, ये नहीं इसने भूल किया इसका प्रॉब्लम है, नहीं, यू आर अ माइक्रोकॉज्म ऑफ द मैक्रोकॉज्म, और आप एक रिस्पॉन्सिबल आत्मा हो। आप किस तरीके से उस भूल को स्वीकार करके अपने अंदर अपनी दृष्टि को परिवर्तन करके व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, उस हिसाब से उसका इन्फ्लुएंस बनेगा ना। यह है कंपैशन, बड़ा दिल रखना। वी आर रिस्पॉन्सिबल इंस्ट्रूमेंट्स इन आवर सोसाइटी, दैट्स व्हाई आई हैव टू चेंज। वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारे जो साकार ब्रह्मा बाबा थे, बहुत हमारी दादियां की, खास करके निर्मल शांता दादी जी जो थे बाबा के लौकिक में डॉक्टर, तो जब छोटे बच्चे होते हैं, साकार बाबा दादा लेखराज उनका नाम था लौकिक में, तो वो तो ज्वेलर था, तो छोटे बच्चे जब होते हैं तो क्या करते हैं, उनको आकर्षण होती है ना ज्वेलरी की, तो वो उनका भाई थोड़ा कुछ शॉप से ले लिया होता तो बाबा को पता चल गया, तो बाबा ने डांट नहीं दिया, बाकी बच्चों को बुला करके पूरा ज्वेलरी का बॉक्स खोला, अच्छा बच्चे आप क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है। सो यू नो द ग्रीड ऑफ द लिटिल चाइल्ड इज नॉट कॉम्बैटेड बाय करेक्शन एंड पनिशमेंट, द ऑपोजिट ऑफ ग्रीड इज जेनरोसिटी, ट्रस्टीशिप। सो बाबा डेमोन्स्ट्रेटेड द वैल्यू ऑपोजिट एज अ करेक्शन। साकार बाबा हम जब यहां 1950 से इंडिया में जब शिफ्ट हुए, तो बाबा भी जब कराची के दिनों में, पता है रात को बच्चों के साथ क्या करता था, कचेरी। कचेरी पता है क्या है, सभी बच्चे को इकट्ठे करते थे बाबा और मम्मा, हमारे फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, और बच्चे को पूछते, अच्छा आज किसने, आज सभी अपने अपना भूल बताओ, पूरा सभा में अपनी अपनी भूल बताओ। बाबा को पता था क्या हो रहा था, लेकिन बाबा कुछ बताएंगा नहीं, आप बताओ। क्यों? क्योंकि बताने से क्या होता है, क्या होता है बताने से है? रियलाइजेशन होता है, और क्या होता है, चित साफ होता है ना, कॉन्शियंस क्लियर हो जाता है ना। दूसरा, देह का अहंकार मरता है, क्योंकि आपको सभा के सामने बताना है ना कि मैंने ये किया, सॉरी, ह्यूमिलिटी पैदा होती है। दीज आर वेरी सिंपल प्रैक्टिसेस। आप देखो भारत, आवर सिविलाइजेशन इन भारत has functioned on an oral practice, not written. Aajkal to legal notices, everything is only legal if it's written. To bhal aap kitna bhi mukh se jhoot bolo, that's accepted. But encouraging honesty in speech is very important. Kyunki honesty in speech breaks the arrogance of body consciousness. देखो अपनापन की फीलिंग आएंगी आपस में जब मैं आपके साथ ऑनेस्टी से बात कर सकती हूं, नहीं? ऑनेस्टी से जब बात करेंगे तब आपका विश्वास बैठेगा ना। सो वी आर अ कल्चर वेयर द स्पोकन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आजकल हमने उसको भी फेंक दिया है साइड पे। तो साकार बाबा न्यू दिस प्रैक्टिस, और हमारे यज्ञ में दादियों ने भी ये प्रैक्टिस चालू रखी थी हमारी सभी बहनों के साथ, ताकि आपस में जो हम सर्विस कंपेनियंस हैं, आपस में हमारे बीच में ऑनेस्टी इन स्पीच रहेंगी, तब जाकर के हार्मनी रहेंगी, आत्मविश्वास काम करेगा, और परमात्म विश्वास काम करेगा, परमात्मा की स्नेह पहुंचेंगी, क्योंकि विदाउट ऑनेस्टी परमात्म स्नेह की अनुभूति नहीं होती है। सच्चे दिल पर साहेब राजी, दिस इज अनदर हायर लॉ। और हमको एक दोनों को ईश्वरीय स्नेह के सूत्र में बांधना है, क्योंकि हम उस एक पिता के संतान है, तब आपस में ब्रदरहुड की फीलिंग होती है, चाहे कोई भी भाषा कोई भी रंग। तो क्रिएटिंग स्पिरिचुअल सिंफनी एट अ डीपेस्ट लेवल रिक्वायर्स डीप सेल्फ रियलाइजेशन, ओपनिंग ऑफ आवर कंपैशन एज द बेसिस ऑफ धर्म एंड डीप गॉड रियलाइजेशन। और लास्ट में हमारी दादी जानकी का एक स्लोगन था, चार लाइन का स्लोगन था कि एवरी क्वेश्चन हैज एन आंसर, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, एवरी पर्सन इज प्लेइंग देयर पार्ट एंड एवरीवन हैज अ राइट टू बी हु दे आर। इफ यू एक्सेप्ट दीज फोर थिंग्स यू कैन बी एन इंस्ट्रूमेंट टू ब्रिंग हार्मनी, यू कैन लिव एंड लेट लिव। ओम शांति। थैंक यू।